हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। वेदांश को डॉक्टर की बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ, लेकिन उसके चेहरे पर डर और घबराहट साफ नजर आ रही थी और बहुत ही ज्यादा दुख भी। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। शायद पहली बार उसके आंसुओं ने इस तरह उसे इतना प्रभावित किया था। वो जल्दी रोता नहीं था, उसने अपने आप को बहुत सख्त बना लिया था, लेकिन अपनी इकलौती बहन के मरने की खबर ने उसे झकझोड़ कर रख दिया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, भले ही उसने आत्महत्या करने की कोशिश की हो। जिस हालत में वो उसे मिली थी, उस दिन भी वेदांश ने एक आंसू नहीं बहाया था। उसे यही लग रहा था कि वो अपनी बहन को बचा लेगा, लेकिन वो उसे नहीं बचा पाया। वो एकदम से लड़खड़ा गया। कभी उसके पीछे खड़े बॉडीगार्ड में से एक ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे संभाला। वेदांश को जैसे एकदम से होश आया। उसने तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, कहाँ है माँ? मुझे अभी उनसे मिलना है, उसे देखना है। मिशिका कहाँ है? वो लोग कहाँ हैं? वेदांश ने अपने आंसुओं को छुपाते हुए काफी सख्त आवाज में पूछा। डॉक्टर घबराते हुए बोला, मैंने आपसे कहा ना, वो यहाँ से ले गई हैं, हमें भी नहीं पता कहाँ, हो सकता है आपके घर गई हों। डॉक्टर की इस बात पर वेदांश ने उनकी तरफ घूर कर देखा। डॉक्टर पहले से ही घबराए हुए थे, उनके माथे पर पसीने की बूंदें भी नजर आ रही थीं। उन्होंने एक हाथ से अपने माथे का पसीना पोंछते हुए कहा, इट्स योर फैमिली मैटर मिस्टर वेदांश ठाकुर, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, एंड आई एम रियली सॉरी फॉर योर लॉस। इतना बोलकर डॉक्टर वहां से जाने ही वाली थे कि तभी वेदांश ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, वॉट रबिश, घर पर कोई भी नहीं है, मैं घर से ही आ रहा हूँ, ऐसे कैसे माँ मिशिका की डेड बॉडी लेकर कहीं भी जा सकती हैं? आप लोगों ने उन्हें परमिशन कैसे दी? क्या आप लोगों को मुझे इन्फॉर्म नहीं करना चाहिए था? इतनी बड़ी बात हो गई है, कोई छोटी बात तो नहीं है मेरी बहन की डेथ होना। वेदांश बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रहा था। उसकी आंखें एकदम लाल हो गई थीं और आंसू भी भरे हुए थे, लेकिन वो अपने आंसुओं को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो वहां पर सबके सामने रोना नहीं चाहता था। डॉक्टर ने काफी सहजता से जवाब दिया, सॉरी बट हम ऐसे ही किसी को नहीं रोक सकते, क्योंकि वो उनकी माँ थी, इसलिए वो ले जा सकती हैं। वैसे भी वो कोई अनजान नहीं थी, आपकी बिन है, आप उन्हें कॉल क्यों नहीं कर लेते? हम लोगों पर इस तरह चिल्लाने से कुछ भी नहीं होगा। अब तक वहां पर अस्पताल के 3-4 डॉक्टर जो मिशिका का ट्रीटमेंट कर रहे थे इकट्ठा हो गए थे। तभी वेदांश ने गुस्से में अपने सारे बॉडीगार्ड और सिक्योरिटी गार्ड को आवाज लगाई। वे सारे वहां पर उसके सामने आकर खड़े हो गए। फिलहाल 3-4 लोगों को ही वो वहां पर अस्पताल में छोड़कर गया था। वे सारे सर झुकाकर उसके सामने खड़े हुए थे। वेदांश ने कहा, तुम लोगों को यहाँ पर क्यों रोका था मैंने? और सौरभ, तुमने इतनी देर के बाद फोन क्यों किया मुझे? जब माँ यहाँ से उसकी डेड बॉडी ले जा रही थी, तुमने उससे पहले मुझे फोन क्यों नहीं किया? वेदांश के असिस्टेंट सौरभ ने आगे आते हुए उसे पूरी बात बताई। सॉरी सर, लेकिन हमें पहले पता नहीं था कि उन्हें कहाँ ले जाया जा रहा है, और उनकी डेथ के बारे में भी हमें कुछ नहीं बताया गया। हमसे कहा गया था कि उनके हालात बहुत खराब हैं और ट्रीटमेंट के लिए उन्हें इमरजेंसी ट्रीटमेंट रूम में ले जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही मुझे इस बारे में पता चला कि आपकी माँ एम्बुलेंस में कहाँ से निकल गई हैं, वैसे ही मैंने आपको फ़ोन कॉल किया। उसकी पूरी बात सुनकर वेदांश ने एक बार फिर डॉक्टर की पूरी टीम की तरफ गुस्से से घूर कर देखा और फिर अपने बॉडीगार्ड की तरफ भी। उन सब लोगों की तरफ देखकर उसने धमकी भरी आवाज में कहा, आप सबको मैं देख लूंगा, और तुम सब तो किसी काम के नहीं हो, मेरे सामने मत आना आज के बाद, नहीं तो जिंदा भी नहीं बचोगे। वेदांश की ऐसी धमकी सुनकर वे सब एकदम ही घबरा गए। वेदांश तुरंत ही वहां हॉस्पिटल से बाहर निकल गया। सौरव उसके पीछे आया और जो बॉडीगार्ड उसके साथ यहाँ तक आए थे, उनमें से 2 बॉडीगार्ड भी उसके पीछे गए। लेकिन बाकी जो हॉस्पिटल के बॉडीगार्ड थे, वे बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे, इसलिए उन्होंने वेदांश के पीछे जाने की हिम्मत नहीं की। वेदांश वहाँ हॉस्पिटल से बाहर निकलकर एकदम ही अपनी कार की तरफ आया और उसने अपना मोबाइल फोन निकालकर किसी को कॉल किया। तब तक उसका असिस्टेंट भी वहां पर आ गया और वो ड्राइविंग सीट पर बैठ गया, क्योंकि इतनी बड़ी खबर मिलने के बाद उसे पता था वेदांश की हालत कुछ ठीक नहीं थी और वो कम से कम ड्राइव करने की हालत में तो नहीं था। सौरभ काफी टाइम से उसके साथ था और वेदांश के लिए ही काम करता था, इसलिए वो उसे काफी अच्छी तरह से जान चुका था। इसीलिए उसे ही इस बारे में इन्फॉर्म किया, क्योंकि उसे पता था अगर वेदांश को बाद में किसी और से इस बारे में पता चला तो फिर उसकी भी खैर नहीं होगी। इसीलिए उसे जैसे ही इस बारे में शक हुआ था, उसने तुरंत ही पता लगाना शुरू कर दिया और जब उसे पूरी बात पता चली तो उसने तुरंत ही वेदांश को फ़ोन कॉल करके बता दिया था। इसीलिए अभी वेदांश उस पर इतना ज़्यादा नाराज़ नहीं था। अभी वो किसी से फ़ोन कॉल पर बात कर रहा था और तब तक सौरभ ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ चुका था। सौरभ को ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ देखकर वेदांश ने भी कुछ नहीं कहा और चुपचाप कार की बैक सीट पर जाकर बैठ गया। अंदर बैठते ही उसने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया और धीमी आवाज में बोला, मॉम ऐसा कैसे कर सकती हैं? उन्होंने मुझे इन्फॉर्म करना भी ज़रूरी नहीं समझा और अकेले मिशिका को अंतिम संस्कार के लिए भी लेकर चली गईं। क्या मैं अपनी बहन का चेहरा तक नहीं देख सकता एक आखिरी बार? उसने अपनी आंखें एकदम कसकर बंद कर लीं, जिससे उसकी आंखों में भरे हुए सारे आंसू उसकी गाल पर बहने लगे, क्योंकि वहां पर फिलहाल उसे जज करने के लिए सौरभ के अलावा और कोई भी नहीं था। इसीलिए उसने अपने आंसुओं को निकल जाने दिया, क्योंकि दुख और तकलीफ तो उसे भी हो रही थी अपनी बहन की मौत की खबर सुनकर। सौरभ अभी भी उसके इंस्ट्रक्शंस के इंतज़ार में था, क्योंकि सौरभ को खुद भी नहीं पता था कि कहाँ जाना था। इसलिए उसने अपनी गर्दन हल्की सी मोड़ कर पीछे वेदांश की तरफ देखा। वेदांश ने कहा, शमशान घाट चलो जल्दी, हमारे पास टाइम नहीं है। वेदांश के इतना बोलते ही सौरभ ने कार स्टार्ट कर दी और सीधा शमशान घाट की तरफ ही बढ़ गया। और वेदांश के पीछे उसके बॉडीगार्ड की कार भी आ रही थी उसकी कार का पीछा करते हुए। वेदांश को इस बारे में पता था, लेकिन उसने मना नहीं किया। उसे बस अभी जल्दी से जल्दी अंतिम संस्कार होने से पहले वहां शमशान घाट पहुंचना था और इस बारे में उसे अपनी माँ से बहुत सारे सवाल भी करने थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी माँ ने ऐसा क्यों किया। इतनी बड़ी बातों से बताना ज़रूरी नहीं समझा और अकेले ही उसकी बहन का अंतिम संस्कार करने के लिए भी लेकर चली गई। क्यों मॉम, क्यों क्यों कर रही हैं आप ये सब? क्यों हमेशा मुझे दुख और तकलीफ़ें देती रहती हैं? क्या मज़ा आता है आपको ऐसा करके? हमेशा आपने मुझे दर्द ही दिया है और कभी मुझे नहीं समझा। आज भी आप वही कर रही हैं। सारी औरतें ऐसी ही होती हैं, आप भी। मिशिका ने भी नहीं समझा, मैं ये सब उसकी भलाई के लिए कर रहा था और उसने ऐसा किया। कोई भी औरत मुझे नहीं समझ सकती, कोई भी नहीं। इतना बोलते हुए वेदांश ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और सिर पीछे की तरफ टिका लिया। टू बी कंटिन्यूड। मिशिका का अंतिम संस्कार होने से पहले वेदांश पहुंच पाएगा शमशान घाट? और उसकी माँ ने क्यों किया ऐसा? क्या वेदांश को अपने सारे सवालों के जवाब मिल पाएंगे? क्या लगता है आप लोगों को, वेदांश क्यों करता है अपनी माँ से इतनी नफरत? इसके पीछे की क्या वजह होगी? जानने के लिए पढ़ते रहिए आगे के एपिसोड और कमेंट भी करिए। पिछले एपिसोड पर किसी ने भी कमेंट नहीं किया, ऐसा क्यों?